अब आगे। नानी माँ ने अरमान को दिलासा देते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त अरमान को क्या हुआ कि वो अचानक पहली बार नानी माँ के गले लग गया, क्योंकि वसुंधरा से भले ही वो कितनी नफरत करता था, लेकिन वो उसकी माँ थी और उसने अपनी माँ का बहुत भयानक रूप देखा था। नानी माँ से अपनापन पाकर अरमान ने उन्हें गले लगा लिया। सबकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। पूरा परिवार भले ही सगे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन परिवार जैसा साथ रहते थे। उन सबकी आंखों में नमी थी, खासकर आकाश और सुमित की आंखों में। वे दोनों इमोशनल हो गए थे। जैसे ही अरमान को ये एहसास हुआ कि उसने नानी माँ को गले लगाया हुआ है, वो झटके से अलग हुआ और बिजली की सी तेजी से लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। आस्था की आंखें पूरी तरह से भर उठी थीं। वो अरमान का मूड ठीक करना चाहती थी। उसने एक आइडिया भी निकाल लिया था। स्थिति काफी इमोशनल हो गई थी और सभी अपने कमरों में चले गए थे, क्योंकि नानी माँ ने सबको बता दिया था कि अब कोई एक्स्ट्रा रस्में नहीं होंगी और कल शाम शादी होगी, और जो भी रस्में होंगी वो नानी माँ खुद करवा लेंगी। नानी माँ की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर एक सुकून था। लेकिन वसुंधरा, जो मेंशन के बाहर बैठी हुई थी, उसके बारे में सबका ध्यान जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मारिया, टाइगर, देव तीनों मिलकर वीर रायचंद को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं लग पाया था। अबीर सिंह राठौर भी वीर रायचंद को ढूंढना चाहता था, लेकिन वो भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। उस वक्त अबीर बहुत गुस्से से भरा हुआ बैठा हुआ था। अमरेश रायचंद अबीर के पास आया। अबीर ने अमरेश को पूरी तरह से डांट दिया कि उसके बेटों को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अमरेश भी शर्मिंदा हो गया था। ऊपर से वसुंधरा, जो मेंशन चली गई थी, इस बात का भी उसे बहुत बुरा लगा था। वसुंधरा और उसके बीच में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था। उसके बाद वसुंधरा रायचंद हाउस छोड़कर सिंघानिया मेंशन आ गई थी। अमरेश को इस बात की तसल्ली थी और वो जानता था कि अरमान सिंघानिया इतनी आसानी से अपनी माँ को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। आस्था जल्दी ही अरमान के साथ कमरे में थी और उसके ठीक पीछे पीछे राजेश खाने की थाली हाथ में ले आया। आस्था ने इशारे से खाने की थाली टेबल पर रखवा दी और राजेश को वहां से जाने के लिए कह दिया। अरमान अपने कमरे के शानदार सोफे पर बैठा हुआ था। आस्था ने अपनी कोहनी से अरमान के हाथों को हटाया और उसके गोद में बैठ गई। आस्था अपनी मेहंदी खराब नहीं होने देना चाहती थी। आस्था पपी सा चेहरा बनाकर अरमान की ओर देखकर बोली, हमें बहुत भूख लगी है, प्लीज आप हमें खाना खिला दीजिए ना, हमारे हाथों में मेहंदी लगी है। पर हम चाहते हैं कि हमारी मेहंदी का रंग बहुत डार्क हो, उससे पता चलेगा कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान कुछ पल आस्था की ओर देखता रहा, लेकिन आस्था ने इस बीच एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अरमान की ओर देखती रही। तभी अरमान ने आस्था के हाथों को ऊपर करते हुए उसकी कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और बेहद करीब जाकर बोला, तुम्हारी मेहंदी का कलर मेरे प्यार का सबूत नहीं है। मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, अगर इसका कोई सबूत दे सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मेरा ये दिल। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के कानों को चूम लिया और फिर जल्दी ही आस्था को अपनी गोद में लिए प्यार से उसे खाना खिलाने लगा। उस वक्त अरमान बेहद सदमे में था, बेहद गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव से वहां बैठा हुआ था और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था, और उसकी फ्रस्ट्रेशन खुद को सजा देने के बाद ही निकलने वाली थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अरमान आस्था की बातों में पूरी तरह से खो गया था और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा था। उसके मन में अब किसी तरह का कोई बोझ नहीं था और ना ही कोई फ्रस्ट्रेशन था। आस्था खाना खाते हुए मुस्कुरा रही थी कि कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वेल, अब धीरे धीरे शाम हो गई थी। वसुंधरा रायचंद विला के बाहर अरमान के मेंशन के बाहर से नहीं हटी थी। दादाजी ने सिक्योरिटी को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वो उस औरत पर नजर रखें, क्योंकि उन्हें वसुंधरा पर इतना भी भरोसा नहीं था। वसुंधरा वहीं बैठे बैठे रो रही थी और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो सिर्फ अपने बेटे की शादी देखना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा को इस बात का पता चल चुका था कि अरमान एक बार फिर से शादी कर रहा है, इसीलिए वो सिर्फ शादी देखना चाहती थी। इसीलिए वो बाहर बैठकर रिक्वेस्ट कर रही थी। उसे बैठे हुए 10 से 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब तक किसी ने भी उसे मेंशन के अंदर नहीं लिया था। वहीं नानी माँ ने शादी के फंक्शन के अकॉर्डिंग आहान को अपने साथ लगा लिया था और एक बहुत ही अच्छा सा समा पूरे हॉल में बनाया था, जो ढोलकी टाइगर ने फोड़ दी थी। टाइगर से नानी माँ ने नई ढोलकी भी मंगवा ली थी। अब नानी माँ सबको एक साथ लेकर बैठी हुई थी और मजे से ढोलकी बजा रही थी, और साथ ही साथ आहान और ध्रुव दुपट्टा ओढ़कर थिरक रहे थे। कुछ अलग ही बहुत ही प्यारा सा खुशनुमा सा माहौल नहर का बना हुआ था। वहीं आस्था और अरमान एक साथ बैठे हुए थे और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। जिस तरह से आहान ध्रुव के साथ नौटंकी कर रहा था, सबकी बार बार हंसी छूट जाती थी। तभी नानी माँ ने रौनक को डांस करने का इशारा किया, लेकिन रौनक डांस नहीं करना चाहती थी। लेकिन ध्रुव ने तुरंत रौनक को डांस करने के लिए खड़ा कर दिया और अब रौनक, आहान और ध्रुव तीनों एक साथ घूम घूम कर डांस कर रहे थे। लेकिन ध्रुव तुरंत उन दोनों के बीच में से बैठ गया। अब सिर्फ आहान और रौनक वहां रह गए थे और दोनों मजे से डांस करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए छेड़खानी भी कर रहे थे, तो सब कुछ बहुत ही प्यार और अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे नानी माँ बोली, हम संगीत की रात ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा धूमधड़ाका हो। इस तरह से छोटी छोटी खुशियों के बीच में अपने संगीत का फंक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तब नानी माँ की बात सुनकर सब मुस्कराने लगे थे। वहीं दूसरी ओर दादा मन मन में शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अरमान ने खुद को जख्मी नहीं किया, वरना वसुंधरा को देखने के बाद उसके जख्म हरे हो जाया करते थे और अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो खुद को हर्ट किया करता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि अरमान ने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो इस बात से काफी राहत मिली और दादाजी खुश थे। वहीं राधिका, जो उस वक्त उस फंक्शन में मौजूद नहीं थी, और सुमित की नजरें बार बार राधिका को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि रौनक के प्लान के मुताबिक राधिका को सुमित के करीब नहीं जाना है, वो इसीलिए ढोलकी फंक्शन में भी मौजूद नहीं थी। आस्था और रश्मि को तो पता था कि राधिका क्यों नहीं है, लेकिन नानी माँ को राधिका की कमी खल रही थी और वो तुरंत सुमित की ओर देखकर बोली, सुमित बेटा, ये तुम्हारी होने वाली बीवी कहाँ रह गई? जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ, उसके बिना क्या मजा आएगा, आखिरकार वो भी तो दुल्हन है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सुमित, जो खुद राधिका को देखना चाहता था कि आखिरकार राधिका कहाँ है और वो अब तक उसे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि पूरा दिन बीत गया था लेकिन राधिका उसके सामने नहीं आई थी। रौनक राधिका का खाना भी उसे कमरे में ही देकर आई थी, तो ये बात सुमित को अजीब लगी, तो इसीलिए उसे नानी माँ के बोलने पर बहाना मिल गया और वो उसके कमरे की ओर जाने लगा। वहीं प्रियंका अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लाए नानी माँ के बराबर में ही बैठी हुई थी और अपने हाथों की तालियां बजा रही थी, लेकिन उसका ध्यान इस वक्त आस्था और अरमान के उस हाथ पर था जो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे, और वो बहुत ज्यादा इस वक्त जलकर राख हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अरमान को अपना बनाए तो बनाए कैसे।
वो अरमान को हर हाल में हासिल करना चाहती थी, हर हाल में वो उसे अपनी जिंदगी में चाहती थी। जिस जिंदगी को उसने ठुकराया था, वो रहकर उस दिन को कोसती थी जिस दिन उसने अपनी शादी से भागने का डिसीजन लिया था, और कहीं ना कहीं इसके लिए अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा दोष दिया करती थी। उसे तो लगा था कि शायद पैसों के चक्कर में उसका पिता उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा रहा है, इसीलिए प्रियंका घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन अब रियलिटी जानने के बाद उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, और प्रियंका सोच रही थी कि जिस जगह आज आस्था बैठी हुई है, वो जगह वो बैठी होती और वो उसकी जगह है, आस्था की नहीं। वेल, वहां चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, सभी बहुत अच्छे से डांस वगैरह कर रहे थे, इसीलिए सुमित राधिका के कमरे में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि राधिका ने कमरे को अंदर से लॉक किया हुआ था। सुमित पहले तो चिढ़ गया कि अचानक से इस लड़की को दरवाज़ा लॉक करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि राधिका ने पहले कभी इस तरह से दरवाजे लॉक नहीं किया था और सुमित जब मर्जी उसके कमरे में चला जाता था। लेकिन आज दरवाज़ा लॉक देखकर वो हैरान हो गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब राधिका ने अंदर से ही जवाब दिया, कौन है? अब सुमित हैरान हो गया कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, अंदर से पूछ रही है कौन है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। लेकिन फिर सुमित खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से बोलता है, मैं हूँ सुमित, दरवाज़ा खोलो, और तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो? नानी माँ तुम्हें बुला रही है, फटाफट से नीचे आ जाओ। ऐसा बोलकर सुमित रोबदार लहजे में राधिका को धमकाने लगा था। तब राधिका शांत स्वर में बोलती है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही हूँ, आप जा सकते हैं। ऐसा बोलकर राधिका अंदर ही अंदर अपनी हंसी दबाती हुई बेड पर बैठ गई थी। वहीं सुमित पूरी तरह से झुंझला उठा था कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, एक तो उसने दरवाजा नहीं खोला और ऊपर से आने के लिए साफ साफ मना कर रही है। लेकिन इससे पहले कि सुमित गुस्से से दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता, ठीक उसी वक्त रश्मि वहां अटप की। रश्मि, जो कि नानी माँ को सुमित को कहते हुए सुन चुकी थी कि वो राधिका को बुला कर ले आए, लेकिन अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग रश्मि इतनी जल्दी सुमित की बेचैनी को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रश्मि तुरंत वहां आ गई थी और सुमित की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, सुमित भैया, मुझे लगता है कि आप चले जाइए, मैं राधिका से बात करके आती हूँ, उसे अपने साथ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि ने सुमित को वहां से जाने के लिए कह दिया था, और सुमित एक नज़र बंद दरवाजे की ओर देखकर वहां से चला गया था। तभी सुमित के जाने के बाद रश्मि ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। राधिका ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया था और तुरंत फिर से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। तब रश्मि बोली, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है। सुमित भैया का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। अब बस तुम कल के दिन कल सुबह सुबह यहां से बाहर निकलोगी और कल अपने प्लान का हमें आखिरी राउंड पूरा करना है। जैसे ही रश्मि ने ये कहा,
राधिका ने तुरंत रश्मि को गले से लगा लिया था और इमोशनल होते हुए बोलती है, वाकई तुम मेरी बहन हो जो इस तरह से मेरी इतनी मदद कर रही हो। और फिर जल्दी ही रश्मि एक बार फिर से आकर महफिल में बैठ गई थी और नानी माँ से उसने कह दिया था कि राधिका कुछ ठीक फील नहीं कर रही है, इसीलिए वो आराम कर रही है। तब नानी माँ ने भी जाने दिया और परवाह करते हुए बोली, ठीक है, उसका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे भी कल उसकी शादी है, तो जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुरा देती है। और अभी अच्छे से फंक्शन एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक दो सिक्योरिटी वाले भागते हुए मेंशन के अंदर आए थे। सब हैरानी से सिक्योरिटी वालों की तरफ देखने लगे। तब दादाजी सिक्योरिटी वालों की ओर देखकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम इस तरह से घबराए हुए क्यों हो, क्या हुआ बोलो। तो वो सिक्योरिटी वाले घबराकर बोले, वो साहब जी, वो जो मैडम बाहर बैठी हुई है वो बेहोश हो गई हैं और उनकी सांस भी नहीं चल रही है। जैसे ही उन सिक्योरिटी वालों ने ये कहा, अरमान पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अरमान भले ही वसुंधरा को जिंदा नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो इस तरह से अपनी माँ को भला मरने कैसे दे सकता था। जैसे ही अरमान और बाकी सब ने ये सुना, सब दौड़कर बाहर की ओर भागे और जल्दी से वसुंधरा को अरमान ने गोद में उठा लिया था और सीधा उसे मिनी हॉस्पिटल में ले आया था और डॉक्टर वसुंधरा का इलाज करने लगते हैं। तभी आस्था ने अरमान के सर पर हाथ रखकर कहा, अरमान जी, एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने आपके साथ जो किया है बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आप भी उनके साथ गलत करेंगे तो आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। अरमान जी, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, वो सिर्फ आपकी शादी देखना चाहती है, तो आप उन्हें शादी तक यहाँ रहने दीजिए, वैसे भी कल शादी हो जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। आस्था की बात सुनकर अरमान ने केवल सपाट लुक आस्था को दिया था और उसके बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया था।